अब आगे देखिए आयत, कुरान के लफ्जों पर जरा गौर कीजिएगा तो शर्मसारी नहीं होगी, वरना बहुत सारे लोग इस आयत पे बड़े शर्मिंदा होते हैं। आपको पता है आज ये आवाजें हैं, अल्लाह माफ करे ऐसे मुसलमानों को, हिदायत दे जो कहते हैं सूरत तौबा को कुरान से निकाल दो। आज कई मुल्क ऐसे दुनिया के सूरत तौबा नहीं पढ़ाते अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में, और आयतें ये पेश करते हैं, या अय्युहन नबी युजाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। ए नबी, कुफार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ, यानी इनसे जिहाद करो। कहाँ ले जाएंगे आप इस आयत को, कहाँ छुपाएंगे? आगे और भी आयतें आती जाएंगी, हर दिल मोमिनीन वाली, तो लोग परेशान होते हैं, कहते तौबा तौबा, ऐसा दीन तौबा हम नहीं दिखा सकते, और नॉन मुस्लिमों को तो ये आयतें कभी ना सूझे। अल्लाह फरमा रहा है मेरे और आपके कहने और सुनने की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। फरमाया आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नुम है, वो बदतरीन जाए करार है। ये लोग अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफिराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए, मगर उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे ना कर सके। गज़वे तबुक से वापसी पर मुनाफिकीन ने नबी सल्लम की जान लेने की कोशिश की थी, कत्ल का हमला था, उसकी तरफ इशारा कि इरादे तो किए लेकिन वो कर ना सके। इनका ये सारा गुस्सा इसी बात पर है, ताकि अल्लाह और इसके रसूल ने अपने फजल से इनको गनी कर दिया। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज आ जाए तो इन्हीं के हक में बेहतर है, और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह इनको दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी और आखरत में भी, और जमीन में कोई इनका हिमायती और मददगार नहीं होगा। देखिए, जो वो काम नहीं करते वो बातें करते हैं, ऐसे लोगों को इस्लाम मुश्किल लगता है जो इस्लाम पे अमल नहीं करते, और जो जितना अमल करने लग जाता है उतना उसको इस्लाम आसान लगता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन आयात में ये सबक देते हैं कि तुम जाहिद जंग की बजाय सख्त मेहनत अगर दीन को सीखने में कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर से निफाक के पौधों को निकाल देगा। अब्दुल्ला बिन मुनाफिक कौन था? मस्जिदों में नमाज पढ़ता लेकिन तन्हाई में इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग्स करता। अल्लाह ताला ऐसे किरदार को मेरे और आपके सामने लाकर आईना दिखाते हैं कि कहीं तुम ऐसे ना हो। और यहाँ ये भी पता चलता है कि पैसे वाला शख्स था, खाते पीते लोग अमूमन इस खराबी का शिकार होते हैं, सारे नहीं। जिनके पास इल्म होता है ना, उनका माल उनको और नेक कर देता है, और जिनके पास इल्म नहीं होता ना, उनका माल उनको और अल्लाह से दूर कर देता है। फरमाया इनमें से बस ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर इसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और साले बन करेंगे। सोचिए, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग आयत है, यानी बहुत इरादे करते हैं, अल्लाह बस माल दे दे फिर ये कर दूंगी, अल्लाह घर दे दे ये करूंगी, औलाद देंगे ये करेंगे। अब अल्लाह ने दे दिया, मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से इनको दौलतमंद कर दिया तो बुखल पर उतर आए, कहते पूरी नहीं पड़ती, खर्चे इतने बढ़ गए, अब जरूरियात इतनी है। कभी कहते हैं हाय ये काम हो जाए मैं सबसे आगे होंगी, मैं अपना नाम सबसे पहले आके लिखाऊंगी, लेकिन नाम लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं नहीं ये मुमकिन ही नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह से वादे करें और वक्त पड़ने पर उसको निभाए ना, ऐसे लोग अपने पाओं पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। नतीजा ये निकला कि इनकी इस बदअहदी की वजह से जो इन्होंने अल्लाह से की है, और इस झूठ की वजह से जो वो बोलते हैं, अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक बिठा दिया। हाईलाइट करेंगे, निफाक का ठप्पा दिल में कब लगता है? जब अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। नियत करते हैं, इरादे करते हैं, ये मौका मिला ये करेंगे, वो मिला वो करेंगे, ये देखें होगा, लेकिन जब वक्त आता है तो मसलतों का शिकार, मजबूरियों का शिकार। उस वक्त लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूर ये हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों को पीछे कर दो। ये ऐसी बातें, देखिए मुनाफिक जो होता है ना, एक कमजोर इमारत की तरह, जाहिर ऊपर से देखी हुई लगती है लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होती है, उसके अंदर ईमान की जड़ें मजबूत नहीं होती। तो अगर उसके ऊपर आप कोई इमारत खड़ी करना भी चाहेंगे तो नुकसान क्या होगा? जाहिर वो अच्छी लगेगी लेकिन अंदर से गिर जाएगी। तो किसी को गिरती झूलती इमारत अच्छी नहीं लगती, लोग उसके पास से भी नहीं गुजरेंगे। इसी तरह गिरते झूलते मुसलमान भी लोगों को नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उनको पता है कि ये तो किसी वक्त भी हमारे ऊपर गिर जाएंगे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें निफाक से पाक कर दे और कोई ऐसी चीज हमारे दिल में ना आ जाए। फरमाया ये कैसा निफाक है जो इसके हजूर इनकी पेशी के दिन तक इनका पीछा न छोड़ेगा? क्या ये लोग जानते नहीं कि अल्लाह को इनके छुपे हुए राजों और इनकी पोशीदा सरगर्मियों की खबर है? वो तमाम गैब की बातों से पूरी तरह बाखबर है। वो खूब जानता है कि इन कंजूस दौलतमंदों को, जो रजा और रगबत के साथ अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं और इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये है वो सहाबी जो सारी रात कुआं चलाते रहे और खजूरें लेकर आए। क्या बातें लोगों ने उनको की? और इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास अल्लाह की राह में देने के लिए इसके सिवा और कुछ नहीं, जो वो अपने ऊपर मुशक्कत बर्दाश्त करके देते हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक सजा है। ऐ नबी, ख्वाह ऐसे लोगों के लिए आप माफी की दरख्वास्त करें या ना करें। देखिए कितनी शिद्दत है, नबी के भी इख्तियार में नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। कहा अगर आप 70 बार भी इनके माफ करने की दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह इनको हरगिज नहीं माफ करेगा, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और अल्लाह फासिक लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। जैसे कोई लोग बागी होते हैं ना, बगावत कर देते हैं, एजिटेशन कर दी, तो उनकी भी तो सजा मौत ही है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों की माफी की तरफ दुआ करने से भी रोकते हैं। जिन लोगों को पीछे रहने की इजाजत दी गई थी वो अल्लाह के रसूल का साथ न देने और घर बैठने पर खुश हुए। नोट कीजिएगा, एक होता अल्लाह के काम से बंदा दूर रहे तो गिल्ट हो, रोए धोए, वो वापिस आ जाएगा। चंद दिन घर में बैठ के कहेगा सॉरी मैं तो और परेशान होगी, मेरे तो काम भी नहीं खत्म हुए और मेरे घर वाले भी राजी नहीं हुए। लेकिन कुछ लोग हैं जो घर बैठने पे खुश हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इनका हाल क्या है, इन्हें गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करें। इन लोगों ने कहा इस सख्त गर्मी में मत निकलो, लोगों ने इनकी हिम्मतें तोड़ी, गर्मी बहुत है घर बैठे रहो। इनसे कहो क्या कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नुम की एक आग तो ज्यादा शदीद है गर्मी में। इनसे कहो जहन्नुम की आग इससे ज्यादा गर्म है। लौ कानु यफ्कहून, काश ये सोचते समझते। आज लोग मशीनों पे खड़े होके पसीना दौड़ाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं और कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं, कैलोरीज को बर्न कर दो, ब्लड प्रेशर घुट जाए, ये हो, और अल्लाह के रास्ते में पसीना नहीं बहाते। जब अल्लाह के रास्ते में मुश्किल आए कहते हैं नहीं नहीं घर बैठो, फिर घर बैठ के जब मोटे हुए तो कहा बजाओ कहीं मशीनों में बैठ के दो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसका पसीना अल्लाह के रास्तों में बहे। और आप देखिए जहन्नम की आग कितनी शदीद होगी जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ रखा। और अल्लाह ताला बताते हैं कि मौके बार बार नहीं मिलते, बार बार तुम्हारे घर की दस्तक नहीं बजेगी, आज इसकी फिक्र कर लो। और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने टैलेंट दिया था लेकिन उन्होंने अपना टैलेंट जाया किया, तो अब अल्लाह ताला करे खुशियां ना मनाओ अपनी महरूमी पे, बल्कि फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम कर दें, एंटरटेनमेंट कम करें, फन के नाम पर जिंदगियां ना लगा दें। आज काफिर के साथ साथ मुसलमान को भी देख के ऐसे ही लगता है जिंदगी का मकसद फन है। कोई वीकेंड ऐसा नहीं है जो फ्री सीरियसली घर रह सके। नाइट्स देख लीजिए, रातें, दिन, गर्मियां, सर्दियां, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, किधर जाएंगे, ये सब कुछ क्या बताता है कि ऐसे लोग जो हैं वो जिंदगी को फन समझते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये दुनिया फन प्लेक्स नहीं है, रोया करो, इसलिए कि जो बदी तुम कमाते हो ये इसकी जजा है। हकीकत है कि आज हंसने हंसाने का कल्चर है, मीडिया को ले लीजिए, फिल्मों को देखिए, ड्रामों को देखिए, बच्चों के कार्टून को देख लीजिए, हर एक बस हंसना हंसाना चाहता है। और इसी हंसने हंसाने ने जिंदगी के मकसद से दूर कर दिया। फिर मैं अगर अल्लाह इन्हें तुम्हारे दरमियान वापस ले आए और आइंदा इनमें से कोई जिहाद के लिए जाने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते। जब आसान टास्क होता है, फायदे मिलने की उम्मीद है तो जाना चाहते हैं। कहा तुम मेरे साथ नहीं चल सकते और ना मेरे साथ कभी तुम दुश्मन से लड़ सकते हो, तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया था तब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो। देखिए एक ऑप्शन मिस हो जाए ना तो फिर बहुत सारी ऑप्शंस चली जाती हैं। कभी गाड़ी में जाते हुए आपने एक एग्जिट मिस किया होगा तो उसके बाद अगला एग्जिट हो सकता है कि 50 मील के बाद आए या आए ही ना। तो बस दफा यही हालात हो जाते हैं लोगों के साथ कि जब उनको नेकी का मौका मिलता है तो वो पीछे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अब इनको दोबारा नहीं आना होगा। अब्दुल्लाह बिन उबई का इंतकाल हो गया तबूक के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका बेटा आया, सच्चा मुस्लिम था, अब्दुल्लाह ही था उसका भी नाम। कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे पता है मेरा बाप गुनाहगार था लेकिन था तो कलमा गो, मेरा दिल करता है बेटा होने के नाते कि आप इसकी बख्शिश की दुआ करें, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं तो शायद अल्लाह उसको माफ कर दे, तो आप मेरे साथ चलिए। अल्लाह के नबी देखिए इतने साफ दिल के थे, जिस शख्स ने सारी जिंदगी फितने उठाए आपने उससे भी कभी ग्रज नहीं पाला, आज हम एक साथ काम करने वालों के लिए ग्रज रखते हैं। बात जब मुसलमानों के लिए खराबी है, आपने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। कहेगा अल्लाह के नबी एक और फरमाइश करो, ये अपना कुर्ता तो मुझे दे दें, मैं आपके कुर्ते में अपने बाप को दफन करूं। बेटा होने के नाते ख्वाहिश कहती कि किसी ना तरह अल्लाह बहाना बना दे और मेरे बाप की बख्शिश हो जाए। آپ نے کہا لے لو، آپ نے اپنا کرتا دیا، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا ایک احسان تھا آپ کے اوپر. غزوہ بدر کے قیدیوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس آئے تھے تو ان کے بدن پہ کرتا نہیں تھا، تو آپ نے اس وقت خواہش کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا پہنائے. تو چونکہ عبداللہ بن ابی لمبے چوڑے جسم کا تھا اور ان کا کرتا جو تھا حضرت عباس کو پورا آ گیا، اس کرتے کے بدلے میں اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دے دیا. عبداللہ بن ابی آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں مدفون ہے. اللہ کے نبی خود اس کی قبر میں اترے، اس کو اپنا لعاب لگایا، اس کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعائیں کی، لیکن اللہ کا فیصلہ سن لیجئے. تو خوف سے مر جانے کا دل کرتا ہے کہ آج ہم دل کے نفاق کے ساتھ کعبے کی چادروں میں کفنا دیں، زمزم میں بھیگے ہوئے کفن بھی ڈال دیں، لیکن اگر دل میں کھوٹ کھپٹ ہے، اگر اسلام سے دوری ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی بھی مرے، آپ اس کی نماز جنازہ بھی ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ ہی کر لیا کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اللہم اللہ تجلنا منہم. دعا کیجئے اللہ اس نفاق پہ ہماری موت نہ کرے کہ ہم دنیا سے اس طرح کے کام کرتے ہوئے جائیں. منافقوں کو خوف آتا تھا قرآن کی محفل میں، کیونکہ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے قدرت رکھتے تھے، یعنی ریسورسفل تھے، مال دولت سب افورڈ کر سکتے تھے، کوئی کمی نہیں تھی ان کی زندگی میں، وہی تم سے آ کر درخواستیں کرنے لگے. کس کی؟ اپلیکیشن کی، کہ وی کین گو وتھ یو. کیسے؟ کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا. سوچیے، ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والوں نہیں، والیوں ہے لفظی ترجمہ دیکھے. عورتوں کا کام ہوتا ہے گھر میں بیٹھنا، مردوں کا تو نہیں. جو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے، اس کو مردوں والا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کیسے پول کھولتا ہے، اسی لیے یہ صورتیں عام لوگ نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر پاتے لوگ. اسی لیے فرمایا کہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور اس لیے کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. منافق کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو ڈیسیژن کرنا نہیں آتا. اور فرما دیا بخلاف اس کے رسول نے اور ان کے لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی. کبھی دین کے راستے میں آتے آتے تھک جائے نا، تو اس آیت کو یاد کر لیں. آپ کہیں گے اچھا اس کا وظیفہ پڑھ لیں. وظیفہ پڑھ لیں، کیسے؟ ترجمے کو دیکھ کر بار بار پڑھیں. آج میں تھک گئی ہوں، لیکن اللہ مجھے اتنا پیارا دینے والا ہے، میں کیسے تھکوں؟ اب ایک نیا گروہ جس سے اگلے پارے کا بھی آغاز ہوگا، بدو لوگ، جس کو آپ دیہاتی لوگ کہہ لیجئے، جن کو بہت ریسورسز نہیں اللہ نے دیے، عقل بھی نہیں دی، جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے عقل بھی موٹی ہو گئی، تو جن کو نعمتیں کم دی ان کا حساب بھی کم ہے. اب ان کی بات ہے، ان میں بھی بہت سارے منافق تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خبر آپ کو دے رہے ہیں. وجال مؤذرون من الاعراب، بدوی لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے. ہائی لائٹ کریں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی جس کی کو عذر سچا ہے، اس کو اللہ روکے گا تھوڑی، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. اللہ کی نظر آپ کے میرے دل پہ، تو ہر ایک پیچھے رہنے والا منافق نہیں ہوتا. یاد رکھیے، صرف اپنا محاسبہ کیا کرے، دوسرے کے لیے کبھی مت سوچیں کہ وہ کیوں پیچھے رہتی ہیں، وہ کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں جاتا. بھائی آپ کو مجھے کیا لگے، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ اگر کسی دن میں پیچھے رہ گئی تو میرا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر تم نہ کرو بات. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں. رائٹ، پرابلم والے لوگ سن لیں ان آیتوں کو، تو آپ کو تبوک کا سفر یاد آ جائے گا. یقین کریں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رائٹ کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے کئی جگہوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی لوگ آئے، شوق تھا، جذبہ تھا، जगह नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, तो आपके पास आते, लेकिन आपके पास भी कुछ नहीं था, तो क्या हुआ? और जब आपने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम नहीं कर सकता, तो वो मजबूरन वापस गए, और हाल ये था कि इनकी आंखों से आंसू जारी थे, और इन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि वो अपने खर्च पर शरीके जिहाद होने की कुदरत नहीं रखते। इसमें हर एक वो सिस्टर सोचे कि जिनके पास वाकई रिसोर्स नहीं है, गाड़ी खराब है, नहीं है, कुछ भी है, मजबूरी है, तो क्या दिल में दुख भी है, आंखों में आंसू आते हैं, या शुक्र करती हूँ, चलो शुक्र है आज नहीं जा सकते, मुतमईन बैठ जाते हैं? नहीं, वो आंखें आंसुओं से भरी हुई लेकर वापस जाते थे। उन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि वो अपने खर्च पर शरीके जिहाद होने की कुदरत नहीं रखते। अलबत्त एतराज इन लोगों पर है, इसको हाईलाइट कीजिए, सारी पकड़ मुझे लगता है कयामत के दिन उनकी होगी जिनके पास है। कुछ लोग होते हैव्स और कुछ होते हैं हैव नॉट्स। हैव नॉट्स बच जाएंगे, आज दुनिया में वो बेचारे लगते हैं, कल वो बहुत शाह होंगे, खुश होंगे, शुक्र अल्लाह ने काम दिया, हिसाब ही नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, एतराज उन लोगों पर जो मालदार हैं और फिर भी तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि इनको शिरकते जिहाद से माफ रखा जाए, इन्होंने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया, इसलिए अब ये कुछ नहीं जानते कि अल्लाह के इनकी इस रविश का क्या नतीजा निकलने वाला। बार बार एक ही जुमला, घर बैठने वाले, घर बैठने वाले।